नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सुनहरे नियम पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के लगभग हर धर्म, हर दर्शन में किसी न किसी रूप में मौजूद है। और वो नियम है, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना?
सुनने में जितना आसान है, मुझे लगता है अमल में लाना उतना ही मुश्किल। और इसी एक नियम में व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक शांति का पूरा सार छिपा हुआ है।
बिल्कुल। और इसी विचार को आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प के जरिए और गहराई से समझेंगे। आज की हमारी कोशिश ये जानने की है कि क्या ये एक अकेला विचार सच में हमारी दुनिया बदल सकता है। चलिए इसे हर स्तर पर परख कर देखते हैं।
इसकी शुरुआत होती है सत्संकल्प के 11वें संकल्प से, जो कहता है, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। अब ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, नैतिक सलाह नहीं है। पूज्य गुरुदेव इसे एक तरह का आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं।
आध्यात्मिक विज्ञान?
हाँ, मतलब जैसा एक्शन वैसा ही रिएक्शन। ये एक तरह का सोशल या कहिए साइकोलॉजिकल नियम है कि आप जो ऊर्जा बाहर भेजते हैं वही लौटकर आप तक आती है।
तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? हम सब ये बात जानते हैं, फिर भी हम इसे रोज तोड़ते हैं, ऐसा क्यों है?
देखिए, गड़बड़ तब शुरू होती है जब हम, जैसा सत्संकल्प में कहा गया है, लेने और देने के दो बाट बना लेते हैं।
अपने लिए अलग पैमाना और दूसरों के लिए अलग।
हाँ, इसके पीछे एक मनोविज्ञान भी है। हम अक्सर खुद को अपनी नियत से आंकते हैं, मेरा इरादा तो बुरा नहीं था, और दूसरों को उनके काम से, देखो उसने कितनी स्वार्थ भरी हरकत की।
अच्छा,
बस यहीं से सारी समस्या की जड़ शुरू होती है।
ये बहुत दिलचस्प बात है। चलिए इसे सत्संकल्प में दिए गए एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं, जो शायद हम सबने अनुभव किया होगा।
ट्रेन वाला है ना?
हाँ, ट्रेन का सफर। जब हम भीड़ भरी ट्रेन में चढ़ते हैं, सीट नहीं मिलती और कोई आराम से पैर फैलाकर या अपना सामान रखकर बैठा होता है तो खून खौल उठता है।
हाँ, मन में आता है कितना मतलबी इंसान है, जरा भी लिहाज नहीं। हम चाहते हैं कि वो सिकुड़कर हमें थोड़ी जगह दे दे। हम उसकी स्वार्थपरता पर उसे मन ही मन कोसते हैं।
लेकिन फिर खेल पलट जाता है। मान लीजिए हमें सीट मिल गई, अब हम आराम से बैठ गए, अगला स्टेशन आता है, कोई और चढ़ता है, और अब हम भी ठीक वही कर रहे होते हैं,
थोड़ा और फैल कर बैठना,
किसी नए आने वाले के लिए सिकुड़ने में आनाकानी करना। तो सवाल ये है कि जो व्यवहार हमें 5 मिनट पहले गलत लग रहा था,
वो हमारे करते ही सही कैसे हो गया?
हाँ,
यही तो वो दुमही नीति है जिसका जिक्र सत्संकल्प में बार बार आता है। हम अपने व्यवहार को हमेशा कोई ना कोई वजह देकर सही ठहरा लेते हैं। मैं तो बहुत थक गया हूँ, या मैंने पहले सीट ली थी, लेकिन दूसरे की थकावट हमें नहीं दिखती।
सही बात है।
ये सिर्फ स्वार्थ नहीं है, ये अपने और दूसरों के लिए बनाए गए दोहरे मापदंड हैं, डबल स्टैंडर्ड हैं।
और ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ ट्रेन की सीट तक सीमित नहीं रहते, ये हमारी जिंदगी के बहुत बड़े और गंभीर फैसलों में भी घुस जाते हैं।
जैसे
शादी ब्याह के मामले। सत्संकल्प में दहेज का उदाहरण दिया गया है, जो आज भी समाज का एक कड़वा सच है।
बिल्कुल। जब अपनी बेटी की शादी करनी हो तो हर पिता चाहता है कि लड़के वाले शरीफ हों, संस्कारी हों और बिना किसी लोभ लालच के उसकी बेटी का हाथ थामें। उस वक्त दहेज मांगने वाले लोग हमें समाज के दुश्मन और राक्षस जैसे लगते हैं,
और हम उनकी बुराई भी करते हैं।
हाँ,
कि कैसे लोग हैं, जरा भी शर्म नहीं।
हाँ, लेकिन जब अपने बेटे की शादी की बारी आती है तो कई बार वही लोग जो अपनी बेटी के समय दहेज के खिलाफ थे, उनकी उम्मीदें और अपेक्षाएं बदल जाती हैं।
तब उन्हें भी समाज की रीत और स्टेटस की बातें याद आने लगती हैं।
सही कहा। ये सिद्धांतों में एक रूपता का भयानक अभाव है। अब आप ही सोचिए, अगर हर कोई अपनी बारी आने पर नियम बदल देगा तो समाज में सुख और भरोसा कैसे कायम होगा?
ये तो हुई सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की बात। मुझे लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड हमें सबसे ज्यादा बिजनेस या कारोबार की दुनिया में देखने को मिलता है ना?
निश्चित रूप से। जब कोई दुकानदार हमें कम तौलता है, मिलावटी सामान देता है या किसी भी तरह से ठगता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है।
हम कहते हैं दुनिया से ईमानदारी खत्म हो गई है,
और हम कसम खाते हैं कि दोबारा उसकी दुकान पर नहीं जाएंगे।
बिल्कुल।
लेकिन जब हमें मौका मिलता है और हम किसी चतुराई से, जिसे हम बिजनेस स्किल या स्मार्टनेस का नाम देते हैं, किसी को चूना लगाकर अनुचित लाभ कमा लेते हैं तो हम उस पर गर्व करते हैं।
हाँ, दोस्तों को बताते हैं कि देखो कैसे होशियारी से सौदा किया।
बिल्कुल। हम ये भूल जाते हैं कि हमने भी किसी के साथ वही किया है जो हमें अपने लिए कतई पसंद नहीं।
इसका मतलब है कि ये सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के आपसी व्यवहार और बातचीत पर भी सीधा असर डालता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार से, सम्मान से और नरमी से बात करें।
अब जाहिर है, किसी का रूखा या अपमानजनक व्यवहार हमें दिनों तक परेशान कर सकता है। कोई हमारी बात अनसुनी कर दे तो हमें बुरा लगता है। अगर बस इतनी सी बात हमारे दिमाग में रहे तो हमारी अपनी भाषा अपने आप सुधर जाएगी।
लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? दिन भर के तनाव में, ट्रैफिक में फंसे होने पर या ऑफिस के प्रेशर में हर किसी से मीठा बोलना, क्या ये प्रैक्टिकल लगता है? कहां पर ये सिद्धांत टूट जाता है?
आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये लगातार अभ्यास और आत्मनिरीक्षण की बात है।
सच कहूं तो ये जानते हुए भी कभी कभी मैं खुद को ट्रैफिक में दूसरे पर चिल्लाते हुए पाता हूँ। बाद में एहसास होता है कि मैंने भी वही किया जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं। तो ये सिद्धांत टूटने के लिए नहीं है, बल्कि टूटने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए है। ये कंपस की तरह है जो भटकने पर सही दिशा दिखाता है।
सही कहा। अब सत्संकल्प में कृतज्ञता और पारिवारिक कर्तव्यों की भी बात है, खासकर उधार के लेन देन और माता पिता की सेवा के बारे में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने जरूरत के समय अपने किसी दोस्त की पैसों से मदद की, आप क्या उम्मीद करेंगे?
यही कि वो मेरी मदद को याद रखे, शुक्रगुजार हो और समय पर पैसे लौटा दे।
बिल्कुल। और अगर वो पैसे लौटाते समय आनाकानी करता है या आंखें फेरता है तो आपको पैसे से ज्यादा उसके व्यवहार का दुख होगा, आपका भरोसा टूटेगा।
तो इसका दूसरा पहलू ये हुआ कि जब हम किसी से मदद लें तो हमें भी वही ईमानदारी और कृतज्ञता दिखानी चाहिए। किसी का पैसा एक दिन भी ज्यादा क्यों रखना, हमें तो समय से पहले उसे लौटाने की कोशिश करनी चाहिए, धन्यवाद के साथ।
और यही तल्क पारिवारिक कर्तव्यों पर भी लागू होता है। हर माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बुढ़ापे में वो उनका सहारा बनेंगे, उनकी सेवा करेंगे।
लेकिन यहाँ भी वही सवाल खड़ा होता है, क्या हम खुद अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? अगर हम अपने बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो हम किस मुंह से अपने बच्चों से सेवा की उम्मीद कर सकते हैं?
सही बात है, बच्चे उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को हमारी उपेक्षा करते देखें तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये बीज हमने ही बोया है।
मतलब हम जो कर रहे हैं वही भविष्य में हमारे साथ होने का एक तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये तो बहुत डरावना विचार है।
इसी को अगर हम और बड़े सामाजिक स्तर पर देखें तो सत्संकल्प नारी सम्मान की बात करता है।
हाँ, और ये बहुत जरूरी है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर की स्त्रियों, हमारी माँ, बहन, बेटी, पत्नी को समाज में हर कोई सम्मान की नजर से देखे,
कोई उन पर बुरी नजर ना डाले,
उनके साथ कोई अभद्रता ना हो।
तो फिर ये कैसे सही हो सकता है कि हम दूसरों के घर की स्त्रियों को, समाज की अन्य नारियों को बुरी या वासना भरी दृष्टि से देखें?
बिल्कुल, जब हमें अपनी बहन या बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं तो हम किसी और की बहन बेटी का अपमान करने का सोच भी कैसे सकते हैं?
ये वही दुमुही नीति का सबसे घिनौना रूप है। पूज्य गुरुदेव तो इससे एक कदम और आगे बढ़कर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव जाग गया कि दूसरे का दुख भी मेरे दुख जैसा ही है, वो किसी पर अत्याचार कर ही नहीं सकता।
अच्छा,
वो किसी जीव की हत्या करके मांस कैसे खा पाएगा जब उसे एहसास होगा कि उस जीव को भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी मुझे होती। वो किसी से बेईमानी या किसी को अपमानित कैसे करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इन सब चीजों से उसे खुद कितना दर्द होता है।
ठीक है, ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं एक आदर्श दुनिया के लिए। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल। दुनिया में शरीफ लोगों के साथ साथ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठाते हैं। सत्संकल्प में उन्हें नर पशु तक कहा गया है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार करें? क्या उनके साथ भी भलाई करते रहें और ठगे जाएं?
ये सवाल हर किसी के मन में आता है और इसका जवाब बहुत संतुलित है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें सावधान रहना है ताकि हम दुष्ट लोगों की दुष्टता का शिकार न बने। अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं, भोलापन और बेवकूफी में फर्क है।
अपनी सुरक्षा करना पहला कर्तव्य है।
हाँ,
तो मतलब ये कि हम धोखेबाजों से सावधान रहें, लेकिन
हाँ, ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उन दुष्ट लोगों की वजह से हमें अपना अच्छा स्वभाव और अपना कर्तव्य नहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ बुरे अनुभवों के कारण हम अच्छाई पर से ही विश्वास खो बैठें और खुद भी कठोर और स्वार्थी बन जाएं।
पर यह संतुलन बनाए रखना तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिले?
सत्संकल्प कहता है प्रकृति से सीखो।
प्रकृति से?
हाँ, बादल बरसते हैं तो ये नहीं देखते कि नीचे उपजाऊ जमीन है या बंजर पत्थर, वो हर जगह बरसते हैं। सूरज और चांद सबको एक जैसी रोशनी देते हैं, अच्छे को भी और बुरे को भी। पृथ्वी सबका बोझ उठाती है, पुण्यात्मा का भी और पापी का भी। हमें भी अपनी अच्छाई को किसी और की बुराई का गुलाम नहीं बनाना चाहिए।
फिर भी एक आम धारणा है कि उदार और भले लोग अक्सर चालाक लोगों द्वारा ठगे जाने के कारण घाटे में रहते हैं। मतलब नाइस गाइज फिनिश लास्ट वाली कहावत ज्यादा सच लगती है। क्या ये सही है?
ये एक शॉर्ट टर्म सच जैसा लग सकता है। हो सकता है कि किसी भले इंसान को अपनी उदारता के कारण कभी कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाए, लेकिन सत्संकल्प हमें बड़ी तस्वीर यानी लॉन्ग टर्म फायदा देखने को कहता है। जो व्यक्ति लगातार उदार और मददगार बना रहता है, समाज में उसकी एक साख, एक इज्जत बनती है, लोग उस पर भरोसा करते हैं।
अच्छा, तो जब उसे जरूरत पड़ती है तो उसकी मदद के लिए ज्यादा हाथ उठते हैं।
बिल्कुल, उसकी सज्जनता से प्रभावित होकर दूसरे लोग जो उसकी मदद करते हैं, वो उस छोटे मोटे नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा लाभ होता है।
हाँ,
अंत में लंबी दौड़ में वो हमेशा फायदे में ही रहता है।
और स्वार्थी व्यक्ति?
इसके उलट, स्वार्थी और चालाक व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी की मदद क्यों करूं, लेकिन जब उसे मदद की जरूरत पड़ती है तो कोई उसके लिए भी आगे नहीं आता, वो उस बड़े सामाजिक लाभ से चूक जाता है।
इस बात को समझाने के लिए सत्संकल्प में एक दुकानदार की कहानी है जो मुझे लगता है इस पूरे सिद्धांत को बहुत खूबसूरती से समझाती है।
हाँ, वो एक छोटी लेकिन बहुत गहरी कहानी है। एक दुकानदार दिन के आखिर में अपने पैसे गिन रहा था।
या
उसने देखा कि कमाई में कुछ खोटे सिक्के आ गए हैं जो कोई उसे धोखे से दे गया था।
हाँ,
वो उन सिक्कों को उठाकर पास की नाली में फेंकने लगा।
तभी उसके पड़ोसी ने उसे देख लिया और टोका।
हाँ, पड़ोसी ने कहा, अरे भाई, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? जैसे किसी ने तुम्हें चला दिए, वैसे तुम भी किसी और को चला दो, अपना नुकसान क्यों करते हो?
जो कि एक बहुत ही आम दुनियादारी वाली सलाह है।
हाँ, लेकिन उस दुकानदार का जो जवाब था वो असाधारण था।
क्या कहा उसने?
उसका जवाब ही इस पूरे सत्संकल्प का सार है। दुकानदार ने कहा, भाई, इन चंद खोटे सिक्कों के लिए मैं बेईमानी का पाप अपने सिर पर क्यों लूं? और मेरी वजह से न जाने कितने और लोग इस धोखेबाजी और धूर्तता को सीखें, उससे तो कहीं अच्छा है कि मैं ये छोटा सा नुकसान उठा लूं। और ये कहकर उसने वो सिक्के नाली में फेंक दिए।
वाह, मतलब उसने सिर्फ बेईमानी करने से मना नहीं किया, बल्कि बेईमानी की उस चेन को ही तोड़ दिया।
बिल्कुल,
उसने वो नुकसान खुद सह लिया ताकि वो बुराई आगे न फैले।
यही इस सिद्धांत का सबसे ऊंचा स्तर है, बुराई को अपने पर ही रोक देना, उसे आगे पास ऑन न करना।
तो आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि 11वां संकल्प सिर्फ एक नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। ये कोई किताबी या आदर्शवादी बात नहीं है।
बिल्कुल, इसका मूल मंत्र है व्यवहार में समानता और सिद्धांतों में एक रूपता। जब हम अपने जीवन से इस दुमुही नीति को हटा देते हैं, तभी सच्ची शांति और तरक्की मुमकिन है। जब हमारा सोचना, कहना और करना इस एक सुनहरे नियम पर आधारित हो जाता है, तो जिंदगी अपने आप सरल और सुंदर हो जाती है।
और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। सत्संकल्प में कहा गया है कि जो दूसरों के दुख को अपना समझेगा, वो हिंसा या अन्याय कर ही नहीं सकता।
ये इस सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम है।
तो हमारा सवाल ये है, जरा सोचिए, अगर सिर्फ ये एक नियम कि जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं वो हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे, दुनिया का हर इंसान, हर समाज, हर देश पूरी ईमानदारी से अपना ले, तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? क्या फिर किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े, शोषण, अपराध या अन्याय के लिए कोई जगह बचेगी? इस एक नियम का पालन इंसान और समाज को किस ऊंचाई तक ले जा सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।